क्रोध अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्यों भगवान कृष्णा अर्जुन जो राजी नहीं थे युद्ध करना, भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित किया युद्ध करने के लिए। क्रोध, युद्ध में क्रोध होना चाहिए। तो ओम शांति 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 बोल के युद्ध नहीं होते। और एक महान भगवत सेवक का प्रसिद्ध क्रोध था हनुमान जी। तो सिद्धांत क्या है, क्रोध अच्छा है या अच्छा नहीं है? तो कैसे क्रोध अच्छा होता है? कृष्ण की सेवा में अगर आवश्यकता हो तो क्रोध प्रकाश करना अच्छा है, अन्यथा नहीं। तो मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम। तो जीवा का दो प्रकार की क्रिया है, क्या वो दोनों क्या है? बोलना और
वाचो।
तो एक बोल दिया है वाचो वेगम और दूसरा है जीवा वेग। इसका क्या मतलब? लेडीज से कुछ सुझाव, जीवा वेगम का क्या मतलब है? क्या स्वादिष्ट खाने का, स्वादिष्ट खाना के लिए लालसा, लालच क्या बोलते हैं? लालच, लाल, लालसा संस्कृत में लालसा और हिंदी में लालच क्या बोलते हैं?
लालच,
मनोवृत्ति। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बोले जीवा लालसे जे इति उति धाय शिष्णो दफरायन कृष्ण नहीं पाए। जीवा तो क्या है? जीवा वेगम, फिर उसके बाद क्या है? उदर उपस्थ वेगम। जीवा, जीवा उदर, उदर का क्या मतलब? और उपस्थ उसका क्या मतलब? लिंग। ये तीन एक लाइन में है ऐसा शरीर में। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जीवा लाल से जय इति उति धाय, जो इधर उधर जाते हैं जीवा लाल से स्वादिष्ट खाना खोज करके। शिष्णोदर परायण, इसका क्या अर्थ? जीवा शिष्ण और उदर परायण होते। परायण का क्या मतलब? परायण का मतलब वो रामायण पारायण, वो हो तो दूसरा अर्थ है। उसका क्या मतलब? आसक्त, आसक्त। जैसे नारायण पारायण, अगर किसी वस्तु पर आसक्ति होते है वो पारायण बोलते। जैसे नारायण पारायण वो ही शब्द है, भक्त नारायण पारायण। तो शिष्णो द पारायण और इस मतलब जीवा शिष्ण और उदर, उदर और ये तीनों के लिए अगर आ सकते, ये तीनों का क्या बोलते हैं, संतुष्टि कमाना की आ सकती अगर हो तो फल होते कृष्ण नहीं पाए, भगवान कृष्ण को नहीं मिलते। तो जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम यो विषहेत धीर सर्वमपिम पृथिवीं सशिष्या। इसका क्या अर्थ है?
ये सब कुछ जो कंट्रोल कर पाएंगे
बना सकते हैं। तो चोय बेगदमी चोय दोष शोध चोय दोष क्या है, असंख्य दोष हो सकते लेकिन चय श्रेणी में आते हैं, चय मुख्य दोष है। रूप गोस्वामी का क्या श्लोक है, हाँ वहां से कुछ सुनते हैं, अत्याहार प्रयासचा प्रजाओं को नियमाग्रह जनसंघस चलो श्रद्धे भक्ति विनश्यति विनश्यति। और ये छह क्या है, अत्याहार अति आहार वो स्पष्ट ही नहीं, ज्यादा ध्यान जो तो भक्तजन प्रसाद सेवा करते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, मतलब जिससे शारीरिक बल होगा भगवान की सेवा करने के लिए, तो ज्यादा नहीं रहते। अत्याहार का और एक अर्थ वो क्या है,
ज्यादा खटक जीरो से ज्यादा इकट्ठा करना धन संपत्ति करना,
धन संपत्ति संचय करना जो आवश्यक नहीं है। अत्याहार प्रयास, प्रयास वो शब्द सब जानते हैं, तो भक्ति में प्रयास नहीं होते, प्रयास से क्या भक्ति नष्ट होते हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे प्रयास एक दोष है।
जैसे दो चीज बहुत डिफिकल्ट अचीव करना है उसके पीछे हम अगर
कोई भी प्रयास जिसका संबंध नहीं है भक्ति के साथ, और भक्ति में भी जो जैसे आप बोलते हैं बहुत कठिन काम है जिसका साधन करना बहुत ही कठिन है, वो ही भक्ति में क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन होते, क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, रुकावट नहीं, डिस्ट्रैक्शन मीन्स टेक्स योर
बाधा
नहीं, बाधा रुकावट तो एक ही अर्थ है, डिस्ट्रैक्शन मीन्स नहीं, डिस्ट्रैक्शन मीन्स आपका ध्यान तो दूसरा तरफ जाता है, डाइवर्ट होता है, डाइवर्शन डिस्ट्रैक्शन विचलित। ओके ऑलराइट, तो जैसे कि हम प्रस्ताव करेंगे हजार करोड़ मंदिर बनाना, तो इतने सारे पैसा कहाँ से मिलना, बहुत मुश्किल होगा नहीं, लगभग असंभव है, तो फिर पूरा जीवन पैसा के पीछे हम रहेंगे और भक्ति के लिए समय नहीं होगा, तो वो एक उदाहरण है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन बहुत विशाल प्लान अगर बनाएंगे जो उसका पूर्ण करना तो लगभग संभव नहीं है, तो समय नहीं होगा और हम ध्यान नहीं रख पाएंगे श्रवण कीर्तन में, तो फिर वो क्या है, अत्याहार प्रयास अच्छा फिर प्रजल, वो एक्चुअली वो वाचो वेगम में आते हैं ना, लगभग एक ही अर्थ है प्रजल, जो कृष्ण मतलब सब निरर्थ कथा, ये उसके बाद क्या है नियमाग्रह, उसका क्या अर्थ है, एक दोष में दो दोष आते हैं, उसका नियम आग्रह और नियम आग्रह, नियम आग्रह का क्या मतलब?
रूल्स को लाइटली लेकर
ग्रहण नहीं करना. नियम भक्ति, नियम ग्रहण नहीं करने, और दूसरा अर्थ है आग्रह. आग्रह का क्या मतलब? उत्साह. तो ज्यादा उत्साह नियमों के लिए, नियम पालन करने के लिए, लेकिन किस लिए पालन करना चाहिए, उसका क्या और क्या उद्देश्य है, हम नहीं समझते और समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं. और खाली यही नियम है, ठीक है, मैं पालन करता हूँ. और मतलब नियम को आ सकते हैं, उद्देश्य क्या है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति होगी, तो नहीं खाली हम रूल्स फॉलो करते हैं बस. तो एक उदाहरण है कि मतलब थियोरेटिकल उदाहरण देता हूँ. तो एक नारी अगर स्लिप जाएगी और ऐसे गिल गए और बहुत दर्द लग रहे है, और कोई ब्रह्मचारी बोलते नहीं, वो उसको नहीं देखूंगा, कुछ नहीं कहूंगा किसी को, क्योंकि नारी है और मेरा कोई संबंध नहीं है कोई नारी के साथ. तो कम से कम दूसरों को बताना चाहिए, ये स्वयं नारी को उठाना, लेकिन नहीं नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ. तो ऐसे एक कठोर नियम पालन करने से अपराध भी हो सकता, ये एक उदाहरण. तो नियम आग्रह, उसके बाद क्या है? जनसंग, जनसंग भक्ति में बाधक है. केवल जनसंग नहीं है, भाजपा भी, कांग्रेस भी, सब भक्ति में बाधक है. जनसंग, और जनसंग इसका क्या मतलब? जनसंग, हम किसी से संग नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? चैतन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध उपदेश है वैष्णव आचरण के बारे में, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार. फिर उसके बाद वो असत संग क्या है? स्त्री संगी, एक असाधु और कृष्ण अभक्त, वो ही असत संग है. असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु. तो देखते हैं हमारे अधिकांश भक्त तो गृहस्थी है, तो सब स्त्री संगी है क्या? स्त्री का मतलब जो विस्तार करते हैं, तो वो स्त्री जिसके द्वारा भौतिक इच्छाएं का विस्तार होते हैं, वो असत संग है. वो स्त्री जिससे भक्ति विस्तार होते, वो स्त्री सत्संग है. स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त, जो कृष्ण भक्त नहीं है. और उनका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका विशेष अर्थ कृष्ण अभक्त मायावादी है. मायावादी का संग भक्ति का नाशक है. तो जनसंग अर्थात स्त्री संगी और उन सभी प्रकार के अभक्त के साथ जुड़े संबंध रखना, तो भक्तों के अलावा खास जो गृहस्थ है तो कुछ संबंध होगा नहीं। जैसे अगर आप बैंक में या ऑफिस में या दुकान में काम करते हैं तो सब दूसरे लोग जो काम करते हैं वहाँ पर तो भक्त नहीं होंगे, तो उनके साथ बात करना है और व्यवहार करना है, लेकिन वो घन संबंध नहीं रखना चाहिए। वो काम के लिए ऐसे शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेम होगा वैष्णव जन के लिए। तो जन संगश्च लोलियम, लोलियम इसका क्या मतलब? लोलियम और लालस है तो एक ही प्रेम। लोलियम का मतलब अधिक लोभ, ज्यादा धन संपत्ति संग्रह करने के लिए मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूंगा, वही लोलियम बोलते हैं। उसके बाद चोय वैगदमी चोय दोष श्रोति चोय गुण देहोदास है। वो छह गुण क्या है? हाँ बोल।
गुस्सा
श्रद्धे भक्ति प्रसिद्ध दोष है जिससे भक्ति विनाश थी, और चोय गुण है जिससे प्रसिद्ध मतलब पूर्ण सिद्ध होता है। वो छह गुण क्या है? उत्साह। भक्ति में आलसी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये छह दोष और गुण तो केवल भक्ति में नहीं है, तो किसी भी प्रयास में ये सब अगर हो तो सिद्धि होगी। जैसे कोई अगर आप व्यापार करते हैं तो प्रथम गुण उत्साह होना चाहिए। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, व्यापार करूँगा, लेकिन व्यापार के लिए ज़्यादा रुचि नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ बैठ के व्यापार करूँगा। अगर कोई आएगा तो ठीक है, हम कुछ बिजनेस करेंगे, तो ऐसे बिजनेस नहीं होते। उत्साही होना चाहिए, उत्साह भक्ति में उत्साह होना चाहिए। और निश्चय इसका मतलब जुड़े संकल्प। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में? दृढ़ता भक्ति में
सततम
जुड़व्रता जुड़ संकल्प। तो दृढ़ता होना चाहिए, नहीं ये कि मैं तीन महीना तो उत्साही होऊंगा और उसके बाद ठीक है, वो भक्ति अच्छी है, लेकिन अभी तो नहीं, इतना सा उत्साही नहीं हूँ। वो उत्साह तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, जारी होना चाहिए। वो उत्साह तो एक दिन दो दिन की उत्साह नहीं होना चाहिए, वो उत्साह पूरे जीवन में होना चाहिए। उत्साह निश्चय और धैर्य, धैर्य। तो मैं हरे कृष्ण माला 16 माला करता हूँ 6 महीने से, और अभी तक रासलीला दर्शन नहीं मिला, ठीक है, तो फिर वापस साईं बाबा के पास जाऊँ। यही भक्ति नहीं है। उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य। तो धैर्य का क्या मतलब कि विश्वास रखना चाहिए कि भगवान का शरण में आया हो और यदि इस मार्ग पर मैं स्थिर रहूंगा तो अवश्य ही भगवान मुझको सहायता करेंगे, तो यही विश्वास रखना चाहिए। धैर्य वो धैर्य के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? उत्साह निश्चय धैर्य आते उसमें नहीं,
हस्बैंड वाइफ टू गेट मैरिड,
पत्नी करके बच्चा पाने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए, उसको
धैर्य उत्सुक होना चाहिए, लेकिन ये धैर्य के बारे में हम बोलते हैं। उत्साही है, उत्साही है, तो धैर्य वो सही उदाहरण देते है, लेकिन गलत शब्द बोल रहे हैं।
बच्चे के लिए इच्छा जल्दी पाने के लिए इच्छा नहीं करना,
कम से कम 9 महीना प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो उत्साह निश्चय धैर्य, फिर उसके बाद तत् तत् कर्म प्रवर्तनत्, इसका क्या मतलब? जो भी करना चाहिए भक्ति में उसको करना, नियम आग्रह नियम पालन करना चाहिए, और नियम के अलावा और बहुत कुछ भी करना है भक्ति सेवा में। जैसे श्रील प्रभुपाद बोले, डू द नीडफुल, जो भी करना चाहिए करो। उसके बाद संग त्याग, जन संग वो ही एक दोष है और संग त्याग वो एक गुण। संग त्याग सतो वृते, इसका क्या मतलब? महाजन, महाजनों के पदों का अनुसरण करना, इसका क्या और एक अर्थ है? सद्वृत्ति, मतलब पैसे कमाना तो सत होना चाहिए। कैसे पैसे मिलते? चोरी, लूटना, मांस बेचना, तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, सद्वृत्ति होना चाहिए। सतो वृत्ते सद्भ्य भक्ति प्रसिद्ध थी। तो बाचो बेगम चय वेगदमी चय दोष शोधी चय गुण देह दास चय सत्संग देह है हमारे। जरा सा आप सब सेल फोन बंद कीजिए, सबके पास सेल फोन है, बंद करो जरा सा। तो चय सत्संग क्या है? ददाति भुंते भोजय चैव षद्विधा प्रीति लक्षण। तो चय क्या है, क्या क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति उसका क्या अर्थ है?
भेंट देना और भेंट स्वीकारना, भेंट देना और भेंट स्वीकारना
भक्तों को भेंट देना, और अगर कोई भक्त हमको कुछ प्रेम से देना चाहते हैं हम ग्रहण करते। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, क्या मतलब? क्या बोलो, कौन बोल रहे हैं वहां से? पंडित समस्याओं प्रकट करना नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। और भक्ति के बारे में बातचीत करना और पूछना, इट्स नॉट जस्ट इन द मॉडर्न, आधुनिक युग में वो काउंसलिंग होते, ये मेरी समस्या है, वो मेरी समस्या, एक्चुअली इट्स नॉट एग्जैक्ट, उसका अर्थ एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, लेकिन इट मीन्स दैट वो भक्ति के बारे में पूछना कि समस्या वो भी मतलब कि ऐसे कि मेरा मन तो पूरा स्थिर नहीं है, तो ऐसे भक्ति के बारे में पूछना, दैट्स एक्चुअली व्हाट इट मीन्स। गुह्यम आख्याति, आख्यान मतलब आख्याति बातचीत करने भक्तों के भक्ति के बारे में, इष्ट गोष्ठी ऐसे गुह्यम आख्याति। और पृच्छति फिर उसके बाद भुंगते भोजायते चैव, इसका क्या अर्थ है? प्रसाद भक्तों को खिलाना और ग्रहण करना, और ये इच्छा है प्रीति के लक्षण। तो ठीक है, भूंगते भोजायते चैव, अभी वो अनुष्ठान होगा नहीं तो ठीक है, आप सब करो। और भूंगते वो यहाँ पे छंग देह है हमारे बसे संगे रहा, बैठ गया आपके पास वैष्णव ठाकुर आपका संग प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या है? एकाकी अमार नहीं पर बोल, अकेले बोल नहीं मिलता हूँ हरिनाम संकीर्तन में, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन, स्पष्ट है ना? समझते सब? नेक्स्ट कृष्ण से तोमा, कृष्ण दीते फारो फारो, मतलब कृष्ण हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके है, तुम मुझको और सबको कृष्ण दे सकते हो, तुम्हारा शक्ति आचे, हमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण कृष्ण बोल के धाई थप पाचे पाचे आपके पीछे क्या बोलते हैं, अनुधावन करते, वो हिंदी में क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।